ادا کے ساتھ قربانی کیجیے یا قربانی میں اپنا حصہ شامل کریں۔ ڈونیشن یا مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 1-866-754-3111 یا وزٹ کریں mwcanada.org۔
کیا آپ کی فیملی میں مسائل چل رہے ہیں اور حالات آپ کو لے کے جا رہے ہیں ڈائیورس کی جانب، یا آپ کا پیارا بنا ول لکھے یا ول لکھ کر آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے؟ ول کے متعلق کوئی بھی کام ہو یا آپ کو چاہیے ٹرسٹی شپ سرٹیفکیٹ، یا آپ کی ریئل اسٹیٹ کلوزنگ نزدیک ہے اور آپ ہیں ایک تجربہ کار لائر کی تلاش میں، ان تمام کاموں کے لیے آپ کی مدد کے لیے ایک باعتماد ادارہ ملک لا آفس بیرسٹرز اینڈ سولیسیٹرز، محمد عتیق ملک آپ کی تمام قانونی مسائل میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جی ٹی اے میں دو لوکیشنز، مسساگا 168 کوئن سٹریٹ ساؤتھ یونٹ 201، ان سکارورو 1825 مارکم روڈ یونٹ 205۔ کال ٹوڈے ملک لا آفس 905-291-4455۔
عائشہ، یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے۔
10 جگہ کیوں، ایک ہی جگہ ہے، فاطمہ گروسرز۔
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں، فاطمہ گروسرز، مسالے، تازہ سبزیاں، پھل، حلال گوشت، میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی۔ گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی۔ میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز، 512 برسٹل روڈ، ویسٹ آف مسساگا، 9058487000۔ فاطمہ گروسرز، سب سے زبردست۔
ویلیج ٹیسٹ پورے آنٹیریو کا سب سے بڑا حلال سپر ریسٹورینٹ ہے۔ کانٹینینٹل، چائنیز، باربیکیو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، کڑھائی آئٹمس ہیں اینڈ سویٹس اینڈ فروٹس میں بے انتہا ورائٹی ہے۔ بہترین فیسٹ انجوائے کیجیے ویلیج ٹیسٹ پہ۔ آفٹر مسساگا دے آر ان اوک ویل ایز ویل۔ ویلیج ٹیسٹ 9052323663۔ ویلیج ٹیسٹ۔ کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی؟ ایک اور مسکنسیپشن کہ لائف، کریٹیکل ایلنس، ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں۔ نہیں صاحب، آپ ایک بار انشور پرو کے فضل ودود سے بات کیجیے گا، 28 سال کا انڈر رائٹنگ کا تجربہ ہے۔ لائف، کریٹیکل ایلنس، ڈسیبلٹی، ٹریول انشورنس، ہر انشورنس کے معاملے کے لیے فضل ودود آف انشور پرو۔ 9056075000 905-607-5000۔
جی صاحب، میرے ناظرین، ویلکم بیک اگین۔ اینڈ 4:35 ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں اور سب عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایسے آزاد ملکوں میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم قربانی کروا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو بانٹ سکتے ہیں۔ مگر اے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، روہنگیا، صومالیہ، یمن، پیلسٹائن، ان جگہوں پہ جو ہے اگر آپ ان لوگوں کا بھی سوچیں اس عید الاضحیٰ پہ، تو آپ پاکستان میں $105 کاؤ اینڈ $200 گوٹ کا جو ہے قربانی آپ کے بہاف پہ کرتے ہیں جناب مسلم ویلفیئر کینیڈا۔ مسلم ویلفیئر کینیڈا کے جناب ریحان میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ریحان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام اجیت بھائی، الحمد للہ۔ آپ کیسے ہیں؟
ہاں جی، ایک دم الحمد للہ۔ بتائیے ذرا کہ مسلم ویلفیئر کینیڈا کے کیا انسینٹیوز ہیں وہاں پر پاکستان اور دوسرے ملکوں میں قربانی کرانے؟
جی جی جی، الحمد للہ مسلم ویلفیئر کینیڈا آلموسٹ لائک 30 ایئرس سے کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے، اسپیشلی جی ٹی اے کے اندر۔ تو ہماری فوڈ بینکس ہیں، شیلٹرز ہیں، ویلفیئر کے اور پروجیکٹس ہیں، سوپ کچنز ہوتے ہیں، فری کلینک ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قربانی کا بھی ہمارا موسٹلی لائک آلموسٹ 27 ایئرز اولڈ پروگرام ہے۔ مختلف کنٹریز میں کرتے ہیں، جس میں پاکستان ٹاپ آف دا لائن ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری آفس موجود بھی ہے، وہاں پہ ہمارے پارٹنر آرگنائزیشن ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور گارنٹیڈ ٹائپ کی ہم کہتے ہیں کہ وہ قربانی ڈلیور ہوتی ہے۔ اس میں ہم لوگ کا جو قربانی شیر ان کا ہوا ہے، کوٹ ہے، وہ ہم لوگ یہیں سے پلجز لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس کو اکارڈنگلی لائک آلموسٹ لائک 20 پلیسز ہیں آل اوور پاکستان، جیسے کہ لائک کراچی، لاہور، اسلام آباد، ڈفرنٹ تھرپارکر سندھ کے اندر ایریاز ہیں، پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، کے پی کے کچھ ایریاز ہیں، کشمیر ہے۔ تو ان ایریاز میں اس دفعہ بھی ہم نے آرگنائز کیا ہے तो बेस्ट यही है कि आप हमारे जो वेबसाइट है मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा .org और MWCanada.org पे जाके आप वहाँ पे सिक्योर वे में सेफली टाइमली बेसिस में कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो यहाँ पे जो हजरात कुर्बानी करते हैं GTA के अंदर, तो फूड बैंक हमारे जो है वो ओपन होते हैं और फूड बैंक में जो कुर्बानी कर यानी आप लोग जो कुर्बानी करते हैं उसके थर्ड वीक जो डोनेशंस का होता है वो आप जरूर लाके मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा के फूड बैंक को डोनेट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी कुर्बानी की मीट से मुस्तफीद हो सके जो कि यानी टेक्निकली होते नहीं है ओवरसीज करते हैं या यहाँ पे गोश्त भी काफी एक्सपेंसिव हो गया, फूड बैंक काफी इन्फ्लेशन की वजह से काफी एक्सपेंसिव हो गई चीजें, तो फूड बैंक के रिसिपिएंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते।
अच्छा, हर साल हम यही बात करते हैं कि जब आप यहाँ इस मुल्क में जब आप करें जहां पर भी तो जो तीसरा हिस्सा देना है तो उसका भी तरीका कार बता दें कि किस तरीके से इतना ये इतना हो कि एक बैग में ला के आपको दे दिया और आपने उसको सारे के सारे को फ्रीज कर दिया।
जी, 2 pound का पैक एक बना दें ताकि वो फ्रीज हो जाए और फ्रीज होके जब लोग उसको यूज करें तो उनको सही क्वांटिटी में मिल जाए, वरना ये होता है कि वो बड़े पैकेजेस बन जाते हैं उसको फ्रीज हो नहीं पाते और जब फ्रीज हो जाते हैं तो फिर वो कुक होने के लिए मुश्किल होता है उसका। तो अगर 2 pound या लेस देन 2 pound होगा तो इट्स इजी टू यू नो फ्रीज प्लस इजी टू कुक।
मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा के हम साहब रेहान साहब से बात कर रहे हैं। रेहान साहब, मैं टोल फ्री नंबर देता हूं ताकि आप अगर टोरंटो या टोरंटो से बाहर भी कुर्बानी कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 1-866-754-3111 या आप तशरीफ लाइए MWCanada.org पे MWCanada.org पे जाके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं स्ट्रेस यही करूंगा कि अगर आप टोरंटो से बाहर कुर्बानी करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को याद रखें, $105 काउ का हिस्सा है और गोट आपको मिलेगा $200 का। तो मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को इस ईद उल अजहा पे याद रखें और यहां से लोकल नंबर भी दे दें अपना और आपसे किस तरह इन टच किया सकता है।
416-754-8116 और हमारी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, मिसल आगर के अंदर है 349 जो मेविस रोड पे, मेविस एंड सेंटर पार्क स्कारबरो के अंदर, देयर नगेट मस्जिद 100 मैकलेवन एवेन्यू स्कारबरो में, इसके अलावा 425 टंडा स्ट्रीट विटबी में और 472 टंडा स्ट्रीट विटबी के अंदर है, टंडासन गार्डन की स्ट्रीट, टंडासन गार्डन स्ट्रीट में, तो वहां पे आप बिल्कुल जो लोकल डोनेशन प्लेजेस भी दे सकते हैं, एक पर्सन भी जा सकते हैं। वैसे बेस्ट ये है कि MWCanada.org पे जाके अपने ऑनलाइन डोनेशन प्लेज करा दें, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मोस्ट वेलकम हमें कॉल कर सकते हैं जो 1-866-754-3111।
या ये कि आप अगर टोरंटो में हैं तो आप टोरंटो गिरदुनवा में हैं तो 416-754-3111 नंबर एक ही है, एक जगह 416 आता है और एक जगह 866 आता है। रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
थैंक यू,
अल्लाह हाफिज। रेहान से हमने आपकी बातचीत करवाई और साहब मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा का नाम आप याद रखें। और साहब अगर आपने ईद उल अजहा भी आ रही है उसकी भी सेल लगेगी अभी और अभी भी सेल लगाई हुई है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पे। सुल्तान भाई का मेन क्या होता है कि ये कोई ना कोई बहाने से सेल लगा देते हैं, कुछ ना कुछ उनको बहाना चाहिए बस। अभी भी जाएंगे, अभी भी कुछ सेल लगी होगी वहां पर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज के सुल्तान भाई 801 बोवेड ड्राइव बोवेड एंड चिंकूजी के कॉर्नर पर ये होते हैं और आप पहुंच जाइए सुल्तान भाई के पास 905-450-2828 इनका फोन नंबर है। कोई भी टीवी चाहिए हो, कुछ आपको अप्लायंसेज चाहिए हो तो साहब आप जनाब सुल्तान भाई ऑफ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दो स्पॉन्सर्स का पैगाम लेता हूं पर आप मैं वापस आऊंगा। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है।
अजीत सुनते हो,
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब।
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
ringing, buzzing, hissing. Time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
قرض سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577
کہیں مارگیج نہیں مل رہی جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں ری فائنینسنگ آپشنز رینیول آپشنز مارگیج ڈیفیکلٹیز ڈاؤن پیمنٹ ایشوز سیلف امپلائڈ پرائیویٹ فنڈز سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے نمبر ٹو کال 647-923-5659 647-923-5659 لائسنس نمبر 10530
ایشین فوڈ سینٹر دی ساری ہی لوکیشن سے 17 مئی تو 26 مئی تک لگ چکی ہے وکٹوریا ڈے سیل 350 گرام کوالٹی پنیر 299 10 pound آشیرواد ملٹی گرین آٹا 999 10 pound انڈیا گیٹ روزانہ رائس 1199 400 گرام دیپ آلو ٹکی 299 1 liter ایپی فریز 199 ایشین فوڈ سینٹر دی ساری ہی لوکیشن سے تسی تازے پھل فروٹ سبزیاں پانڈے اور مٹھائیاں بھی لے سکتے ہو زیادہ جانکاری لی کال ایٹ ایشین فوڈ سینٹر ایٹ 416-740-3260
کیا بات ہے بیٹے بڑی آواز نظر آ رہی ہے
ابو جان خدا کا واسطے اس گاڑی سے تو بہتر ایک گدا گاڑی خریدے ہر موڑ پہ رک جاتی ہے
تو بچے پریشان کیوں ہوتی ہو لاؤ گاڑی کی چابی دو ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو ریپیئر گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم انجن ٹیون اپ 4 wheel کمپیوٹر بیلنس بریکس نئے اور پرانے ٹائر ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج اسٹارٹر آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فار فار بھاگے گی اس کی میلوچ ڈرائیو ٹوبیکو ٹیلی فون 416-747-6800
حلال میٹ تے سبزیاں نالے پھل بھی تازہ مل دے ایتھے مچھلی انڈے دودھ دہی تے سستے چاول مل دے ملے پکوڑیاں تازہ مٹھائیاں گرم سموسے مل دے بٹالہ سپر مارکیٹ
سکار پورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکار پورو مارکم روڈ تے انگلینڈن دا سنگم فون 416-264-3111
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਇਲ ਜੁਐਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਬਰਾਈਡਲ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਪਾਇਲ ਜੁਐਲਰਸ ਐਟ 2720 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ 42 ਬਰੈਂਪਟਨ 9057907879
جیسا پروگرام ایک بار خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں ہمارے فام مظفر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نریندر مودی جی نے جو بات کہی نا وہ مجھے یقین نہیں آتا مطلب ماشاءاللہ انڈیا جس ترقی کی روش پہ ہے آج چاند پہ چلا گیا اور مارس پہ چلا گیا جس ترقی مگر یہ جو بات یعنی بڑی گڑبڑ بات کر دی ہے یعنی آپ اپنی عوام کو شاید انڈیا والے محسوس کرتے ہوں گے نریندر مودی نے اپنا ایک انٹرویو دیا اور ان کا انٹرویو اس کا بڑا وائرل بھی ہوا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں بایولوجیکل پیدا نہیں ہوا یعنی آئی واز ناٹ کنسیوڈ بائی پھر میں واز ناٹ ریزڈ ان دا ووم مگر میں بایولوجیکلی پیدا نہیں ہوا بلکہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے اب شاید میں الفاظ کو توڑ پھوڑ کے بیان کر رہی ہوں آئی ڈونٹ نو مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں حیاتیاتی طور پر پیدا نہیں ہوا مجھے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا بایولوجیکلی بھی پیدا ہو سکتے ہیں خاص مقصد کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ظاہر ہے ہندوستان کی تاریخ میں ایک عام آدمی جو ایک عام سی زندگی گزارتا تھا وہ خود کہتے ہیں کہ میں چائے والا تھا اور آج میں وزیر اعظم کی پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوں एक्सक्यूज मी, ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये एंकर रुबिका लियाकत हैं, उन्होंने पुराने इंटरव्यू का एक हिस्सा है, मगर ये इनका एक हिस्सा जो है ये सब बड़ा वायरल हुआ हुआ है। उनके इंटरव्यू में 7 मरहलों में होने वाले आम इंतखाबात का, आप पता है हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, टोटल 7 स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस मुकम्मल हो गई हैं, 2 स्टेजेस बस बाकी रह गई हैं। सर नरेंद्र मोदी ने जीतना ही जीतना है। मैं ये जमहूरियत के लफ्ज से भी बड़ी खायफ हूं। हर मुल्क अपने आप को दावा करता है कि हमारे यहां जमहूरियत बहुत ज्यादा है, मगर अपोजिशन कहती है भाई जमहूरियत है ही कोई नहीं। इंडिया अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, इंटरनेशनली डेमोक्रेटिक कहता भी है और मनवाने की भी कोशिश करता है। वेयर एज जब कांग्रेस हुकूमत करती थी तो बीजेपी कहा करती होती थी कि ये जमहूरी अमल नहीं है, जमहूरी अमल नहीं है, जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। अब जब बीजेपी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही हैं उसके बारे में जब बात करती तो कहते जमहूरी अमल नहीं है, जमहूरी अमल नहीं है। बहरहाल इंतखाबात आम इंतखाबात और 5 मराहल इसके मुकम्मल हो गए, 2 मराहल मुकम्मल हैं। बस ये अब तो बिल्कुल दिनों की बात है, जून के पहले हफ्ते में नतायज जो है वो ओवरऑल मुकम्मल हो जाएंगे। अब इनका जो इंटरव्यू रुबैका लियाकत के साथ आया जिसमें उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ बल्कि मेरे पैदा करने का एक कोई मकसद है, कुछ लोग जो उनको शायद नापसंद करते हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये उनकी इंतहा पसंदी की इलामत है। अब कहा क्या उन्होंने, रुबैका लियाकत के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद भी, आप इसको खुद भी सुन सकते हैं। उन्होंने पूछा उनसे नरेंद्र मोदी साहब से कि 5 साल पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप दिन रात काम करते हैं, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, और मैं आज 5 साल बाद जब आपको देख रही हूं तो मुझे 5 साल की निस्बत आप में एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आ रहा है, आपने इस इलेक्शन में रैलीज भी ज्यादा निकलवाई हैं, लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट में भी ज्यादा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जब रुबैका लियाकत का यह सवाल सुना तो उन्होंने कहा कि जब तक तो मेरी मां जिंदा थी ना, जब तक तो मेरी मां जिंदा थी तो मुझे लगता था मैं अपनी मां की कोख से मैंने जन्म लिया, मगर अब जब मेरी मां की डेथ हो गई है और जो मैं इर्द गिर्द और अपना जो कुछ मैंने किया उन तजुर्बात को जोड़ के देखता हूं तो मुझे यकीन हो चुका है मेरा यकीन गलत भी हो सकता है, बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी हो सकता है, बहुत से लोग इसको माइंड भी कर सकते हैं, मगर मुझे अब यकीन हो चुका है कि मैं बायोलॉजिकल जिस्म से पैदा नहीं हुआ, मुझे खुदा ने कोई मुझसे काम लेना था और उस काम लेने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। अब यहां पर जो बात आ रही है वो ये कहते हैं कि हिंदू मजाहब में बहुत सारे खुदा हैं और वो शायद अपने आप को भी कोई अवतार समझ रहे हैं। मैं अपने पास से ऐड नहीं करना चाहती, कोट एंड कोट्स में शेयर करती हूं। नरेंद्र मोदी साहब ने इसके अलावा कहा इसकी मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं कि शायद ईश्वर मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं, मैं इस ईश्वर को देख नहीं सकता, सो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं एक भगत हूं, 140 करोड़ मुल्क के बाशिंदों को ईश्वर का रूप मानकर जलता हूं और वही मेरे भगवान भी हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तो जो बात की है उसकी कोई सरपाव ही नहीं मिलता। बहरहाल ये तो लोगों की जाति पसंद नापसंद भी हो सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका ये बयान जमहूरियत के लिए था ही खतरनाक है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को चुना था लोगों की अट्रैक्शन को, तवज्जो को कैच करने के लिए। जैसे वो कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे बेतुकी बात कहकर मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस पर यकीन होगा और वो यकीन भी करेंगे, इंतखाबात में असरात भी हुई होंगे, यानी वो लोग जो हर चीज को अवतार मानते हैं या खुदा मानने पर यकीन करते हैं, तो हम परस्ती की तरफ उनका ये बयान हमें लेकर के जा सकता है। तो देखिए साहब अब क्या होता है, सोशल मीडिया के ऊपर तो इसके ऊपर बड़ी लंबी ले लपत हो रही है और कांग्रेस के रुकन हैं उन्होंने लिखा है कि मोदी खुद को कहते हैं कि इस बात के कायल हैं कि वो हयातियाती तौर पर यानी बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए बल्कि बड़े काम करने के लिए खुदा की तरफ से बराह रास्त भेजे गए हैं और खुदा उन्हें बतौर खास तवानाई फराहम करता है। तो क्या गुजरात फसादात, मुश्तैल हजूम के हाथों मुसलमानों की मारपीट, मणिपुर के कत्ल का उन्हीं के काम है, तो बहरहाल ये तो जितने मुंह उतनी बातें होती रहेंगी। मगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक तो मेरी माँ हयात थी मुझे लगता था कि मैं पैदा हुआ हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं खुदा का एक रूप हूँ। मालूम कहाँ तक ये दुरुस्त है और कहाँ तक गलत है। मैं आपके साथ आरिफा मुजफ्फर, आपको मैं इंग्लैंड लेके जाना चाह रही थी। पंजाब में एक हद तक इज्जत का बिल जो है वो भी पास होने की अपनी इंतहाई शक्ल में है, मगर इस बिल के लिए जो जितने जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जनाब मुंह पे कपड़ा छपड़ा बांध के, आंखों के ऊपर कपड़ा छपड़ा बांध के सड़क के ऊपर आ गए हैं। होना आवाना कुछ भी नहीं है। अब वो पंजाब में हद तक इज्जत बिल पर साफियों का ये एहतजाज है। उन्होंने कहा है कि ये आजाद आवाजों को खामोश करने का एक तरीकाकार है। यहाँ पे ये है कि अगर कोई शख्स कोई तस्वीर पेश करता है या कोई बयान देता है उसमें सदाकत नहीं, उसको मैं तो कहती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए। अगर भी कोई भी डीप फेक वीडियो बनती है तो जिस बंदे ने डीप फेक वीडियो बनाई है आप उसको पकड़े, आप उसको सजा दें। ज़ाती तौर पर इस चीज की कायल हूं, यानी जर्नलिस्ट को इतना मुंह जोर भी नहीं होना चाहिए कि जी हाँ जी हम खुदा का अवतार होते हैं। मैं तो कभी कभी पोएट सुनती हूँ, पोएट देखिए आप साहब, जर्नलिस्ट तो झूठियां सचियां खबरें बनाने ने, मगर जब मैं पोएट को देखती हूँ ना, पोएट हकीकत में कि वो जब अल्फाज उनके ऊपर उतरते हैं, नजूर होते हैं, क्या रदीफ और काफिये मिलते जाते हैं, अल्फाज की बारिश उनके ऊपर होती है, मगर यहां पर के अपनी खबर को सनसनी खेज बनाने के लिए झूठ पर मबनी बयान देना ये कौमों को गुमराही की तरफ लेके जाने के मुतरादिफ हो सकता है। ये बिल जो है कसरत राय से पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद दस्तखत के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया है। हद तक इज्जत के बिल के तहत किसी भी शख्स को सरकारी एहलकार आम शहरियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में गुमराह कुन दावों की सजा दी जा सकेगी। गुमराह कुन यानी अगर आप झूठ पे मबनी है, यस अगर कोई शख्स सच बयान करता है तो आप सच के लिए किसी की भी उसकी पदाश में उसकी सजा नहीं दे सकते, मगर यस गुमराह कुन बात अगर है तो वहां पे आप सजा दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत का मौकफ है कि इस कानून का मकसद फेक न्यूज के फैलाव को रोकना है। इस बिल से किसी भी शख्स या इदारे की खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे को रोका जा सकेगा, मगर अगर वो शख्स गलत काम करेगा तो फिर उसकी करेक्शन कैसे होगी? अगर वो गलत काम करता है और उसकी बात को आप हाईलाइट ही नहीं होने देते तो फिर तो आपने अंधेर नगरी चौपट राजा कर दिया। बहर पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट को इस बिल के ऊपर एतराज है और वो स्ट्राइक के ऊपर निकल आए हैं। पंजाब के ये सहाफी कहते हैं कि हद तक इज्जत बिल 2024 अपनी मौजूदा शक्ल में आजाद आवाजों को खामोश करवाने के लिए और आजादी राय के इजहार को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बिल पर इख्तलाफ पर राय को बुलडोज कर दिया। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है मगर ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं। भाई क्यों तरीकाकार दुरुस्त नहीं है? ये जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी का बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन कानून साजी के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया वो सहाफियों को उस पर एतराज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिल को आम किया और नई मुतफिका तंजीमों से मुशावरत की। भाई आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलना आपने, अगर कोई सच्ची खबर है एंड यू हैव द प्रूफ्स, ब्रिंग इट ऑन द टेबल। आप प्रूफ्स ले आए तो डेफिनेटली बल्ले बल्ले वाह वाह। अब उन्होंने तहरीक चलाने का एक फैसला किया है और साबित तंजीमें मुल्क भर में मुतनाज़े बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे और इस बिल को अदालत में चैलेंज भी किया जाएगा। इस बिल की शकें क्या है? इसका मतलब पंजाब हद तक इज्जत एक्ट 2024 बिल के तहत साफी से मुराद कोई भी शख्स जो पेशावराना तौर पर या बाकायदगी से किसी अखबार, मैगजीन, न्यूज साइट या दीगर न्यूज ब्रॉडकास्ट मीडियम से मुंसलिक हो। बिल के मुताबिक हद तक इज्जत का मतलब किसी झूठे या गैर हकीकी या नुमाइंदगी की जुबानी या तहरीरी या बसी शक्ल में आम शक्ल इजहार के लिए इलेक्ट्रॉनिक और दीगर मीडिया पर नशर करना जिससे किसी की साख को नुकसान पहुंच सकता है। यस हम मानते हैं कि अगर कोई शख्स गलत काम करता है और उस खबर को तशहीर दी जाती है उसकी साख को नुकसान पहुंचे तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज ब्लैक शीप्स। वी गॉट टू आइडेंटिफाई। मगर अगर हम ये कहते हैं कि जी एक जनरल बैठा हुआ है और उस जनरल ने चोरी भी की है, उसने जमीनें भी बनाई हैं, उसने मुल्क को तोड़ा भी है, और अब आप उसके बारे में क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल आप कह सकते हैं, इफ पीपल हैव प्रूफ फॉर दैट। बहुत सारी खबरें गलत भी आ जाती हैं, इसमें कदम कोई शख्स नहीं। आप यकीन कीजिएगा, मुझे बल्कि बाज़ूकात कभी कभी अफसोस होता है कि बिना देखे लोग इतनी बड़ी बड़ी बोहतान लगा देते हैं दूसरे के ऊपर, मगर जहां सच है वहां तो खबर होना चाहिए। अब शिकायत दर्ज करने के लिए वो कहते हैं बिल के तहत सुबह पंजाब में ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा, और ट्रिब्यूनल के सामने अगर किसी शख्स का जुर्म साबित हो जाता है तो उसे 30 लाख रुपए, उससे मिनिमम 30 लाख। अभी जब जैसे फैसल वावडा, अब सुनिए जनाब फैसल वावडा ने क्या किया। फैसल वावडा साहब ने बयान दे दिया, वो हमारे एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब हमें प्रॉक्सीज के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। तो फैसल वावडा कहते हैं मैं तो इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगा, मैं हद तक इज्जत का दावा करूंगा। भाई आप प्रॉक्सी का हिस्सा है, और अगर उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब है कि चोर तो फिर जिंदाबाद। हुकूमत पंजाब के वज़ीर इत्तला'आत उस्मान बुखारी के मुताबिक हद तक इज्जत बिन में खसूसी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। बहरहाल उस्मान बुखारी की रेपुटेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे कभी कभी ना देखता है तारीख के चंद एक और आख याद आ जाया करते होते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना नाम तारीख में लिख। इट्स नथिंग टू बी विद द पार्टी, आई थिंक उस्मान बुखारी हैड सम अदर पार्टी बिफोर। फिर दौसाशी कमान साहब की भी पहले कोई और पार्टी थी, मगर दीज वुमेन दे टच द एक्सट्रीम। अपने थूके को बहुत बार चाटा भी। बाज़ोकात आपने ऐसी बयानबाजी की जिसमें कोई सदाकत भी नहीं, और आपको पता भी है कि वो उसमें सदाकत नहीं। मगर इस मुल्क का अलमिया ये है कि इस मुल्क में जिस जिसने जो कानून बनाए, अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही उन कानूनों की पादाश में कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर गया। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साज़ो आवाज़ में, आपके साथ आरिफा मुजफ्फर। जिक्र करना चाहते हैं हम विलेज टेस्ट का। यस दे आर ओपन टूडे। डॉक्टर साहब आ गए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि डॉक्टर साहब आ गए।
डॉक्टर साहब तो बहुत देर से आपका वेट कर रहे हैं।
टोल्ड मी,
हम तो आप कह रहे हैं
नोबडी एवर टोल्ड मी।
आप समझे कि आप सेटअप कर रही हैं डॉक्टर साहब?
नो नोबडी टोल्ड मी डॉक्टर साहब आ गए।
डॉक्टर साहब माजरत, डॉक्टर साहब मेरी तरफ से माजरत सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
नोबडी एवर टोल्ड मी।
आज तो साबित हो गया ना कि सात खून माफ है।
सात खून माफ है ना? अभी तक कितने हो चुके हैं?
अभी आठवां भी बगैर इजाजत के कर लिया आपने।
ले डॉक्टर साहब आप भी तो ना उन जैसे हो जाए, उनको तो कुरान के सारे लूप होल्स का पता है। आपको भी पता ही होगा, आप भी मुफ्ती हैं।
अभी आप हद के इज्जत का कानून पढ़ रही हैं, इसलिए मैं खामोश था।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दो स्पॉन्सर्स का अनाउंस कर दूं। विलेज टेस्ट को जरूर ताबन दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं ये वो स्पॉन्सर हैं जो मुझे इस काबिल करते हैं ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। ऑनेस्ट टू गॉड आई थैंक देम वेरी मच, एंड आई एम मैं अपने आप को मैं समझती हूं कि मैं इन स्पॉन्सर्स की बिजनेस की तरक्की और तजवीज में जो भी रोल प्ले कर सकती हूँ। मैं आपसे भी कहती हूँ आप एक फेवरेट टेस्ट पे जरूर पहुंचिए। देयर टू लोकेशन, वन इज ऑन 4141 डिक्सी रोड पे, द सेकंड लोकेशन इज 2294 लेक शोर ओकविल के इलाके में। एंड ऑनेस्ट टू गॉड द फूड इज वेरी डिलीशियस एंड इट हैज वेराइटी। जब हम हलाल बफे की बात करते हैं तो ऑन्टेरियो का, जीटीओ का नहीं, ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल बफे, जिसमें बिस्मिल्लाह पर के खाना पकाया जाता है, हलाल गोश्त सर्व किया जाता है, जिसमें यानी यू विल एंजॉय एम्बियंस बहुत जबरदस्त है। इसमें चाइनीज भी हैं, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं, कॉन्टिनेंटल भी है, सैलड बार बहुत बड़ी है जिसमें गोलगप्पे हैं, सैलड है, दही है, चटनियों की 6 किस्में हैं, जिसमें बारबेक्यू आइटम्स की बड़ी वेराइटी है, स्वीट डिशेज की बड़ी वेराइटी है। और विलेज टेस्ट 4141 डिक्सी रोड फैसल चट्ठा साहब को बहुत शुक्रिया। 9052323663 2323 2363। ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय ITN, हमारे अंसारी साहब इसको रन करते हैं। बहुत बड़ा वेयर हाउस था अंसारी साहब का, है और नाउ दे हैव टू। इट वो इट पहला वेयर हाउस जो था वो स्कारब्रो में था। You name it, they have it. Tamam grocery stores, ethnic stores ke saath saath, mainstream ke stores. Yani, this is the product which is available in very many mainstream products. Misal ke taur par, apne desi storeon pe to sab pe hai. Shan ke masale hain, iTen ki products hain, Hamdard ki products hain, iske alawa Minar ki products hain, Minar ka aata. कोई रुकी भी पका मीनार का चावल अगर कोई रुकी नकम्मा नला भी पकाएगा ना वो भी अच्छे पकाएगा सच्ची से और आईटीएन की प्रोडक्ट्स मेनस्ट्रीम के स्टोर्स जैसे मेट्रो है फूड बेसिक्स है फ्रेशको है सोबीज है वॉलमार्ट है लॉबलॉज है इन पे भी मौजूद आपको मिलती हैं आईटीएन की प्रोडक्ट्स नाउ दे बॉट अनदर ह्यूज लोकेशन दैट इज इन वॉन के इलाके में आईटीएन आपकी अपनी कंपनी आइए लेकर के चलती हूँ आपको इंजीनियरिंग से मिलता जनाब डॉक्टर समीउल्ला मलिक साहब बुनियादी तौर पर आप इंजीनियर हैं ऑफ कोर्स लिखने का शौक रखते हैं बहुत खूबसूरत लिखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर अपने एनालिसिस पेश करते हैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से प्रोग्राम के रेफरेंस से आई डिड नॉट नो कि आप मेरे साथ हैं हद तक इज्जत के बिल के बारे में बात हुई मैं बिल्कुल इस बारे में कायल हूँ कि अगर गलत बयानी से डीप फेक वीडियोज बनती हैं और जितने लोग डीप फेक वीडियोज बना रहे हैं और जितने लोग नंगी वीडियोज बना रहे हैं उनको बिल्कुल जनाब इब्राहिम रईसी ने अभी 5 दिन पहले 7 लोगों को चौराहे में खड़े होकर फांसी दी थी उनमें से चाहे वो आला अफसरान हैं इदारे हैं जो लोगों की डीप फेक वीडियोज बनाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए डेफिनेटली मिलनी चाहिए चाहे वो कितने से बड़े इदारे क्यों नहीं है मगर आम खबर के बीच में जैसे अब फैसल वाबडा साहब ने अगर एक बात कह दी कि आपके जज ने कहा है कि भाई अब हमें डराने के लिए प्रॉक्सीज को खड़ा कर दिया गया तो फैसल वाबडा भाई आपकी हैसियत क्या थी आप पीटीआई के साथ आप काम करते थे उसके बाद आपको वहां पे अहमियत मिल गई उसके बाद आपको एज ए बाट इस्तेमाल किया गया कि पीटीआई के पलड़े में से निकाल लिया गया आपने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद फैसल वाबडा साहब ने उनको नवाजने के लिए ही इज अ रिच मैन ही डजंट नीड मनी उनको सेनेटर भी बना दिया गया उनको इलेक्शन भी जिता दिया गया मोहसिन नकवी साहब उनको सेनेटर भी बना दिया गया उनको वजीर अंदरूनी वजीर क्या वजीर दाखला भी बना दिया गया वो जो आपके एक और भाईजान है काकड़ साहब आप वजीर आजम थे आपने उनकी मर्जी के काम किए आपको जनाब एमएनए भी बना दिया गया आपको सेनेटर भी बना दिया गया 6 साल के लिए पक्की तनख्वाह लग गई उसके बाद नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा तो मतलब उन लोगों के लिए क्या सजा है जो हकीकत में गलत काम करते हैं और गलत मौकफ को घड़ते हैं उनके लिए क्या सजा है व्हाट इज दिस हद तक इज्जत का बिल अगर जज ने ये कह दिया कि अब हमें प्रॉक्सीज को खड़ा कर दिया जो हमें डराएंगी धमकाएंगी तो फैसल वाबडा ने इमरान खान ने तो एक वो जज जेबा थी जिसके बारे में कह दिया था हम पूछेंगे तो अदालत की बड़ी बेइज्जती हो गई थी आज फैसल वाबडा ने जब ये बात कही है जबकि जजीज की वाकई बेइज्जती हो रही है तो उन्होंने अगली धमकी एक और दे दिया है कि मैं हद तक इज्जत का दावा करूंगा
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لكفور صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اتقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اب آپ نے حد کے عزت کے قانون کی جو بات کی ہے آپ نے پورا پڑھ کے سنایا ہے جو قانون وہاں پہ پاس ہوا ہے ابھی اسے تو پورا ابھی تک قانون تو نہیں بنا لیکن میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے میں لکھنے کا پروگرام تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا ہی قانون ایسے جو قانون بنایا گیا جو ڈرافٹ نے دیکھا یہ دنیا کے 56 ممالک میں آلریڈی نافذ ہے یہ وہ کہا جاتا ہے دنیا کے 56 ممالک میں اور پچھلے ایک ہفتے سے برطانیہ کے اندر بھی یہ پٹیشن چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو اور اس طرح کے لگام ڈالنے کے لیے قوانین سخت ہونے چاہیے پارلیمنٹ کو اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو ہمارے کیونکہ آج ہی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے انہوں نے अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दिया जो 4 जुलाई को होने वाला है, तो लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि इस दफा इंतखाब के अंदर ये इंतखाबी स्लोगन ये भी होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया है जो कि लोगों की पगड़ियां उछाल रहा है और लोगों के दरमियान बहुत सी गलतफहमी पैदा कर रहा है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके लिए खातरखाम ब्रीफ कॉर्निंग बनाया जाए। इसलिए आपकी जो आपने कहा मैं आपके साथ पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप यहां आपने दो मामले गड़बड़ कर दिए। एक हत्या का दावा कर दिए की बात की और एक के साथ ही आपने उन लोगों की बातें शुरू कर दी जिनको वाकई उनके तो यानी उनकी तहकीक होनी चाहिए कि ये आखिर किन लोगों की पैदावार है कि जिन पे इतनी सारी चीजें जो है हर देवी जो है मेहरबान नजर आती है, किसी को खबर नहीं थी और उठा के उसे एक चैनल के आदमी को उठा के उसे पहले कायम काम पंजाब का वजीर आला बना दिया, फिर उसके बाद उसे वजीर दाखिला बना दिया बगैर उसकी खाश के, फिर उसे वजीर दाखिला की सीट पक्की करने के लिए उसे सेनेटर बना दिया गया, इस तरह फैसला
वाड़ा नहीं, फिर उसको वो भी बना दिया गया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन
बना दिया गया और वाड़ा वजारे दाखिला का उदा ज्यादा बड़ा है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से। मैं आपकी बात दुरुस्त है कि सारे उदे नवाज दिए गए, मतलब क्या उनके पास क्या तजर्बा था, वो तो क्रिकेट वाले ने भी कभी उनका नाम नहीं सुना था, वजारत दाखिला में जो इतने बड़े बड़े काम होने वाले थे वो भी कभी किसी ने सुने थे, और इतने बड़े आदमी जो कि हालांकि वजारत दाखिला की जो पोस्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है मतलब मुल्क के अंदर, यानी मुल्क की तमाम सिक्योरिटी को नजर रखना उसे चलाना मतलब वो उसके हवाले कर दी गई। और दूसरा ये कि फासल वाड़ा अब जो जितने भी ऐसे दीगर जो हजरात हैं जिनमें काकड़ भी शामिल है और बलूचिस्तान के लोग भी शामिल हैं, पंजाब के लोग भी शामिल हैं, ये अपना वजन कायम रखने के लिए आप देखें ना कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हर आदमी को अपनी कोई ना कोई पार्टी शो करनी पड़ेगी किसी पार्टी में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद दोहरा कानूना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी में नहीं है और अपने मनसब संभाले हुए हैं और मनसब वो संभाला हुआ जिसकी जिसकी तनख्वाह कौमी खजाने से जा रही है, यानी कौमी खजाना उनकी तनख्वाह दे रहा है, मतलब ये किस कानून में लिखा हुआ है, कानून के साथ आईन में लिखा हुआ है। इससे भी हटके जरा और ऊपर जाए तो आप ये देखें कि वजीर आजम और हमारे जो वजीर खारजा साहब डार वो रियाज में बैठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, इतवार के दिन जब मुल्क बंद होता है इतवार के रोज जो है वहां पर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उन्हें नायब वजीर आजम बना दिया जाता है, आईन में तो कोई किसी की गुंजाइश मौजूद नहीं, आईन में एक लफ्ज भी नायब वजीर आजम के बारे में लिखा गया, लेकिन यह है कि ये मामला पहले भी शुरू हुआ था, परवेज़ साहब ने ये काम शुरू किया था अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, उन्होंने चौधरी परवेज भाई को पहली दफा नायब वजीर आजम बनाया था, आप इनको वजीर दाखिला इनको वजीर खारजा के साथ साथ नायब वजीर आजम का मनसब भी दे दिया गया है। हम सब जानते हैं कि ये डांडे कहां से मिल रहे हैं, ये नेपोटिज्म कहां से चल रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी बातें, इसमें तो हथकेसी का मसला नहीं है, ये तो हथकेसी से ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। अब ये कि अगर हम इनको समझ लें कि ये हथके आइन है या कौम की हथक की गई है, यहां पर इस मामले में ये हथके आइन की हथक की गई है, फिर इनके हाथ तो कोई कानून मौजूद नहीं है, ये उससे बड़ा कानून है, यानी साइबर आप अपने साइबर के अदारे को अगर आप और ज्यादा मजबूत कर दें तो वो तो हथके के काम को काबू कर लेगा, लेकिन यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से हमारे जितने भी कलमकार हैं जो लिखने वाले हैं, मैं भी लिखने वाला हूं, हम बगैर तहकीक के जब कुछ चीज ऐसे लिख देते हैं जिससे फसाद पैदा हो, आपको बताया कि इस्लाम के अंदर फसाद पैदा करने के लिए भी संगीन सुधार की गई है, लेकिन ये कौन साबित करेगा ये फसाद है या फसाद था, या इसमें बाकी बातें हमारी अदालतें हैं। अब अदालतों के बारे में भी आप एक नई बात चल निकली है आपके सामने है कि अब उन्होंने जो प्रॉक्सी कहा है तो जो वाडा है वो खड़ा हो गया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वाडा ही नहीं बल्कि मुस्तफा कमाल जो है उसने भी खासी बातें की हैं। अदालतों ने बताया तो आपने कहा कि इन दोनों की जो तकारीर है वो पहली अदालत के जिम्मे में आती हैं, इसमें मुकदमा चलेगा, और आज उन्होंने फैसले वाडा ने कहा कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मिनट वापस नहीं लूंगा। यानी गोया एक कौन है जो कि अब अदारों को आपस में जुड़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी अदारे बताते खुद तो नहीं मतलब कोई ऐसी चीज नजर आती, अदारे अफराद का नाम होता है, अफराद को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो अब अदारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आप ये देखिएगा पहली दफा अदलिया के जो 6 जजेस हैं, आखिर जो 6 जजेस आज से 2-3 हफ्ते पहले बल्कि एक महीना पहले अदालत के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को खत लिखा और लिखा कि मुजाहरत हो रही है, यानी आम आदमी नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने 6 जजेस ने खत लिखा, उस पर बकाया तौर पर फुल बेंच भी बैठाया गया, उस पर मुकदमा भी उस पर फैसला भी आ गया, तो इसको बताइएगा इसके बाद बाकी क्या बाकी बचता है। आप सिर्फ कहती है कि कानून बन गया, कानून बनना चाहिए, یعنی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہر کسی کو پکڑے اچھالے, ڈی فیک فلمیں بنی چل جائیں یا اور ایسی بات ہو جائے, لیکن یہ کہ اب ساری اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ شامل ہیں نا, یہ قوم کی توجہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے اور چیزوں سے.
بہت شکریہ سر, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں اگلی صورتحال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. کل جناب رؤف حسن صاحب قابل احترام شخصیت, یعنی میں ان کو جو جس چیز کا بیونڈ دا پارٹی جس چیز کا میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ تمام پرابلمز بھی رہیں, اخباروں میں آرٹیکلز چھپنا بند ہوئے, مگر ان کے آرٹیکلز پاکستان کے بہترین اخباروں میں, چاہے وہ ڈان ہو, دا نیوز ہو, ان کے انگریزی کے وہ آرٹیکلز ان اخباروں میں چھپتے بھی رہے. ویری فائن پرسنالٹی اور بڑا بے ضرر سا وہ انسان بات چیت میں دکھنے میں لگتے ہیں. وزیر ان کے اطلاعات سے جو مشیر ہیں جناب عمران خان صاحب, کل وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام سے نکلتے ہیں, اور اگر آپ نے اس فوٹیج کو دیکھا, اور اگر آپ نے اس فوٹیج کو پلیز میرے ساتھ مل کے ایک نظر آپ اس فوٹیج کو دھیان سے دیکھیں, یہ دیکھیں ایک شخص نظر آ رہا ہے واسکٹ میں نظر آتا ہے, یہ ویڈیو بنا رہا تھا وہاں سائٹ سے, مگر جناب یہ باہر نکلتے ہیں جناب, وہ دیکھیں دو تین آدمی کھڑے ہوئے ہیں سائڈ کے اوپر. اگر عامر آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلے جائیں, ایک گاڑی کے ساتھ, اور وہاں ہولڈ کر لیجئے گا, ایک یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سڑک کے پاس تین آدمی نظر آتے ہیں, ایک آدمی جس نے اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے, آپ اس کے جوتے دیکھیں, اسے جوتے خاص طرز کے پہنے ہوئے ہیں, یعنی عام طور پہ یہ جو ٹرانسجینڈرز یا یہ جو لوگ عام لوگ پہنتے ہیں, دوز آر ناٹ اسپیشل جوتے ہیں, اس نے پینٹ بھی ایک خاص قسم کی پہنی ہے, مگر اس نے اپنے جسم کو اوپر سے ایک چادر سے ڈھانپا ہوا ہے. اب آگے چلتے ہیں, اس کے بعد جناب یہ سارے کے سارے ہلتے ہیں جب یہ رؤف حسن کو آتا ہوا دیکھتے ہیں. رؤف حسن رکتے ہیں ایک لمحے کے لیے, کیونکہ ان کو ایک خواجہ سرا اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, اور وہ اس سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مگر شاید وہ کوئی اپنا ایسا الفاظ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو گریبان سے پکڑتا ہے. اب آپ اگر غور کریں, یہاں سے پھر سلو کریں, یہ شخص جس کے بوٹ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ہیں, اور اس نے چادر اوڑی ہوئی ہے, دیکھیے جی جو انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں وہ تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں, وہ جس انداز سے ان کے منہ کے اوپر جو بلیڈ پھیرا ہے نا, وہ اس شخص نے پھیرا ہے. آگے آئے, آنے دے, آپ دیکھیے وہ ایک ایل جی بی ٹی اس کو پکڑتا ہے, اور یہ آدمی ان کے منہ کے اوپر بلیڈ مارتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. یہ سارے پیچھے سے مارتے پیٹتے ہیں, نکل جاتے ہیں, مگر اس کے بعد وہ شخص جو واسکٹ پہنا ہوا دور سے ویڈیو بناتا ہے, اب وہ اس سین میں انٹر ہوتا ہے. یہ دیکھیے سفید کپڑوں میں اور واسکٹ پہ, یہ اس نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی, کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے, اور یہ واسکٹ والا شخص جو ہے, میں پوچھوں گی کل یا آج رات پہ میری خواجہ صاحب سے, میری جناب رؤف صاحب سے بات ہوگی, تو میں پوچھوں گی کہ اس واسکٹ والے نے آپ کو کیا کہا تھا, اور یہ واسکٹ والا پھر یہاں سے ہٹ کے انہی خواجہ سراؤں کے پیچھے چل پڑتا ہے, جس میں صاف یہ لگتا ہے کہ دس از ناٹ اونلی خواجہ سرا, دس واز اے پلانٹڈ ایونٹ. لوگوں کے, میں نے تو صرف اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے, مگر آپ ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں یا لوگوں کی جو بیان بازی دیکھتے ہیں وہ اس کو کسی اور لحاظ سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟
سب سے پہلے آپا, میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کل سے یہ واقعہ ہوا ہے, اور میں کل سے کوئی درجن مرتبہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں بذاتے خود رؤف صاحب سے, یعنی اس معاملے میں ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کروں, اور میرا رابطہ تو ان سے ہو سکا, لیکن میں نے اپنا پیغام تو پہنچا ہے, میری دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہیں. ایک نظریاتی اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میں ان کا بہت محترم بھی ہوں, باصلاحیت آدمی ہیں, خلیق بہت یعنی شائستہ آدمی ہیں, اور میری ان کی سیاست میں سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے, لیکن حد درجہ میں احترام اور ادب جو ہے وہ بھی میں محض خط رکھتا ہوں, اور میں اس کی آپ کے توسع سے بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ آدمی کو دشمنی میں اتنا دور نہیں نکل جانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیں. آپ یہ بزدل آدمی یہ کام کرتے ہیں, جو بہادر آدمی ہوتے ہیں وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں, وہ اگر آپ تحریر کے اندر آپ کی باتوں کو اچھاتے ہیں تو تحریر کے طور پر ان کا مقابلہ کیجیے. अगर टीवी किसी प्रोग्राम में वो बातें करते हैं तो टीवी प्रोग्राम में वहां बैठ के आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। बेहतरीन तरीका ये है, लेट द पीपल डिसाइड, जो लोग सुनने वाले हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, वो डिसाइड करें इस बात को। लेकिन कल्पना, मैं ये खुद समझता हूं, मैं खुद अपनी जात में से हमला समझता हूं। अब मैं जो लिखता हूं कल्पना, मैं मेरे इस लिखने पे को मुझ पर हमला कर रहे, मैं ये कभी आज तक क्लेम नहीं किया कि मैं जो लिखता हूं 100% जो है, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना सोच का क्राइटेरिया, मैं खुद मेरा तजिया है। आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन दलील के साथ। मैंने कभी भी इस अपने लिखने में कभी यानी अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की, किसी की पगड़ी नहीं उछाली, दलील के साथ बात की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बहुत से जो ऐसे लोग जो कि मेरे ख्याल से बात का इतफाक नहीं भी करते, तो बेशुमार मेरे लोग दोस्तों में हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम जैसे बात भी करते हैं। एक हेल्दी एटमोसफियर होना चाहिए इस सारे मामले में। बदनसीबी यह है कि हमारे माशरे में और बहुत सी घुटन चल रही है। हम ये समझते हैं कि हर काम जो है वो हम दबा के, जोर दे के, उसे डरा के, उसमें हमला करवा के कर सकते हैं। अब ये मामला रहा नहीं। अब ये देखिए ना, जैसे आपने देखा कि एक वो वीडियो बनाने वाला भी था, अब मुझे ये बताइए जो वीडियो बनाने वाला था वो उसे पता था कि यहां पर काम होने वाला है, उस पर यह वीडियो निकाला है। लाजमी बात है उसे कुछ थोड़ी बहुत सुनगुन होगी। आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसे आगे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता कि इसका मेरी किसी बात का हुआ जो तहकीकी कमेटी पे उसमें को असर पड़े या वो पड़े, लेकिन यह है कि इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई सदमे की बात है। इसकी गैर जानदारा तौर पर तहकीक होनी चाहिए और आइंदा इस मामले को कभी भी किसी आदमी के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर समीर मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आपने अगर कोई बात करनी हो तो आप जरूर कीजिएगा, मगर अहम सरकारी हमलों पर साइबर हमलों का खदशा बहुत ज्यादा पैदा हो गया है और वो कहते हैं साइबर क्राइम्स मुहिम से मुतालिक एडवाइजरी नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से एक जारी की गई सर्च, जिसको नाम दिया गया एडवाइजरी। बताया गया है कि साइबर मुहिम सिस्टम में दाखिल होकर फंक्शन के जरिए हिसास डेटा चोरी कर सकती है और इस सदी का सबसे सेंसिटिव मैटर इज डेटा, इज मोर सेंसिटिव देन पेट्रोल और मैन पावर।
जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब आप देखिए इससे बड़ी बात जो आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं एक और खर्च किया जाता हूं, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम निकले हैं इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये है कि जो कि आपके जो दिमाग में उसे रीड किया जाए। आपने कुछ कहा नहीं, कुछ लिखा नहीं, आपने कोई बात नहीं की, लेकिन ये आपके जहन में क्या है उसके ऊपर, यानी उस होले के ऊपर, उस फर्जी बातों पर जो है वो एक कहानी तैयार की जाए जो कि मजीद खतरनाक है। आप जरूरी नहीं है कि इनमें गैर तो अल्लाह के पास है, लेकिन यह है कि आपको ऐसी बात तैयार कर दें और ऐसी बात निकाल दें जो कि फिर दूसरों की फसाद और फितना पैदा हो जाए। इसलिए इसके लिए बड़ी सख्त जरूरत है। और यहां तक जब हैकिंग का ताल्लुक है तो दो हर चीजें हो रही हैं। मैं खुद एक वेबसाइट रन कर रहा हूं, आप यकीन मानिए कि कई दफा हम उस पर हैकर जो है उस पर मदद करते थे, रोज ही हमले होते हैं। ये कुछ बात का यानी मोस्टली तो बच जाते हैं लेकिन बात का हमले का शिकार भी हो जाते हैं। हालांकि हमारी वेबसाइट पर इतनी, मैं नहीं कहता कि जिस आपको अगर व्हाइट हाउस की और पेंटागन की और एफबीआई की वेबसाइट जो हैक हो सकती हैं और बड़े बड़े ममालिक की वेबसाइट हैक हो सकती हैं, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यानी डाटा को चोरी करना ये मसला चल रहा है। मैं थोड़ी सी तहकीकी बात आपसे कर दूं कि सबसे पहला काम हैक करने का मामला जो है रशिया से शुरू हुआ था और रशिया ने जब शुरू किया उसके बाद फिर आज अगर जब आप गूगल करें तो सबसे ज्यादा काम जो है डेटा चोरी का काम जो है वो इंडिया के लोग कर रहे हैं, इंडिया के हवाले कर रहे हैं। और आपके जहां आप कैनेडा में हैं, कैनेडा के अंदर भी 156 के करीब केसेस जो है जो बकाया तौर पर पकड़े गए हैं जो कि उनको कदम कदमा भी चल रहे हैं। इसे अमरीका के अंदर बहुत से केस चल रहे हैं। फिर इसी डाटा जब चोरी किया जाता है तो मेन मकसद ये भी होता है कि लोगों को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। बड़े बड़े अदारों यानी हर हैकर के मुख्तलिफ अहदाफ होते हैं, मुल्कों के मुख्तलिफ अहदाफ होते हैं। मतलब हमारे यहां जो पाकिस्तान की, इंडिया की, रूस की या अमेरिका की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, लाजमी बात है कि वो उनका दावा, सबका दावा तो ये है कि हम खुद को यानी हैक होने से बचाने के लिए हमने टूल जैसे रखे हुए हैं और उस क्यूज से हम जो है कोशिश करते हैं कि गौरव को डिग आउट किया जाए, लेकिन अक्सर हमने ये लिखा है कि जब भी किसी मुल्क की वेबसाइट बड़ी हैक होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा अदारा ही मिलता है, लेकिन ये जो हैकर्स होते हैं कभी अपना सुराग नहीं छोड़ते। अब आप ये देखिए कि मुझे याद है कि एक दफा मेरी वेबसाइट अपनी हैक हो गई थी, डाटा चोरी करने की कोशिश की गई थी, और उस जमाने में जो सीरिया के अंदर सख्त तरीन जंग चल रही थी, और जब वो डिग आउट करते करते साइबर वालों से ट्रेस किया पता चला कि वो सीरिया के अंदर बैठा एक आदमी उसने ये काम किया है, अपना सुराग नहीं छोड़ा था, आखिरी सुराग जो है वो सीरिया से मिला है, मतलब सीरिया से आगे जो जाके फिर वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है दुनिया को, और इसके लिए होना तो ये चाहिए कि हम फिक्र तौर पे इसके ऊपर को कार्रवाई करें, यानी मुल्कों की बात कर रहा हूं, वो ऐसे को कार्रवाई करें। और मुझे तोको है कि जिस तरह आप जो मामला उठ पड़ा है बरतानिया के अंदर भी, और जैसे मैंने कहा कि 56 ममालिक के अंदर ये यानी हद के इज्जत के जो दावे चल रहे हैं, ये भी सारे इसी का यानी इसी से लिंक करते हैं आपके इस यानी हैकर से इन डेटा से।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पाकिस्तान की PDM2 सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि PDM2 के बनाए जाने का मकसद जो था, वन ऑफ द मकसद शायद कुछ इसराइल से मुतल्लिक था या इसका मकसद कश्मीर से मुतल्लिक था। बड़ा खुले उन्होंने बयानात दिए हैं, कुछ फरमाएंगे कि PDM2 जो इस वक्त है वो कहां तक अपने मौका या जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव कर चुकी है।
देखिए अब मैं एक छोटी सी आवाज अर्ज करता हूं कि होता क्या है कि बॉसेस पीछे एक ही होते हैं जो काम करवा रहे होते हैं। अभी आप देखिए कि कैसा इत्तेहाक है कि ये जो पंजाब की हुकूमत ने हद के जिद का कानून पास किया है, ये इमरान खान के जमाने में शुरू हुआ, उन्होंने शुरू किया तो एक शोर मच गया। यही उज़्मा बुखारी से का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी सब उन्होंने कहा कि ये मुंह पे कालक मलने वाली बात है। वो तो कानून तो पास ही नहीं, उन्होंने तो पास अभी किए नहीं, उसके बाद वो रुक गए, उन्होंने छोड़ दिया इस मामले। लेकिन अब जो है पंजाब को ने किया है दावा, तो इसके बारे में क्या राय है? क्या आप जैसे जो बाखबर साफी हैं वो यूट्यूब के जाके वो ऐसे क्लिप नहीं निकाल सकते जिसमें इसकी मुखालफत की गई थी? एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो तो पिछले इमरान खान के जमाने के अंदर ही PTI की एक तो खातून मेंबर ने असेंबली के अंदर सबसे पहले, यानी इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, असेंबली में पहले तकरीर की थी कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अरब ममालिक जो कि जिनका एक मसला है वो तस्लीम कर रहे हैं, तो हमारा तो कोई सब को ऐसा मसला नहीं, हम उसे क्यों तस्लीम करें? हमने उसे तस्लीम नहीं किया, हम तो उसे तस्लीम ना करके इसराइल को बहुत सा नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की, एक लंबा वहां पर भी एक मामला चला, बताया गया कि भाई इसराइल को ना मानने या उसकी असूली वजूहत क्या है इसराइल को मानने या ना मानने की। बहरहाल उस वक्त भी डांडे जो थे वो कहीं और जाके मिले थे, किसी ने उनको इशारा किया था ये काम करें। दरअसल ये कौम की नर्व चेक करने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं, शुरू की जाती हैं इसराइल के बारे में तस्लीम करने के बारे में। हम उसकी ये बड़ा आसान है ये कह देना कि अरबों ने तस्लीम कर लिया है इसलिए हमें तस्लीम करने में, हमारी बात कुछ और है। आप देखिए कि वो ही नेतन्याहू जो है वो बाकायदा तौर पर उसके बयान मौजूद है, वो खुलम खुला कहता है कि हमें दुनिया में सबसे बड़ा अगर खतरा है तो पाकिस्तान से है। अब इस पर कभी हम गौर ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि ईरान, इसके बाद ईरान है, उन्होंने कहा कि दुनिया में दो नजरियाती रियासतें हैं, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है, और सबसे बड़ा हमें खतरा जो है पाकिस्तान से है, ये खुलम खुला उसने कहा। अब आप ये देखिए कि एक ऐसी रियासत जो हमें खुलम खुला अपना दुश्मन करार देती है, वो हमारे वजूद को खत्म करने के दरपा है, और हम उसके वजूद को तस्लीम करने के लिए बातें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये एक बुजदली है, लोगों की तवज्जो हटाने वाली बात है। मुल्क के अंदर जो दूसरे मसाइल चल रहे हैं उनका तुझो हटाने की बात है। मुल्क के अंदर और बेशुमार लामतना ही मिसाइल मौजूद है इस वक्त, उन पर मिसाइल पर तुझो देने की जरूरत है। इसराइल को तस्लीम करने वाली बात जो है ये ना तो होनी है ना होगी, ये सिर्फ तुझो हटाई जा रही है। दूसरे बड़े मसाइल हैं हमारे यहां, महंगाई के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, बेरोजगारी के मसाइल हैं, सियासी अफरा तफरी है, बदमनी चल रही है, बदमनी हम अदविया का खुलम खुला जो है एक लड़ाई का मूड बन रहा है अदविया के साथ, ये सारे काम हमारे हैं। हमारे कौन सा काम है जो हम आइन के मुताबिक कर रहे हैं? ये हमारे बड़े बड़े काम हैं। आप इस काम की तवज्जो दें, इसराइल की बात करके तो आप तवज्जो हटाना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ और आखिर में जो आप ऐड करना चाहते हैं? मैंने जिंदगी में हमेशा यही सुना कि पाकिस्तान बुरे वक्त से गुजर रहा है, ہر انسان نے اپنی اپنے پارٹی لیڈر کو اپنی پسند کے لیڈر کے الفاظ ہمارے کانوں میں اور ہمارے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی، مگر آج پاکستان جس صورتحال یا جس نہج کے اوپر کھڑا ہے، آپ قرضے کے حوالے سے بات کر لیں، آپ اپنی ایکسپورٹس کے لحاظ سے بات کر لیں، کوئی بھی چیز سر قابل تسلی نظر نہیں آتی. عدالتیں آپ کی 24 گھنٹے وقت ضائع کرتی ہیں، رات کے 12-12 بجے اشرافیہ کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں، مگر غریب آدمی کو انصاف ملنے کا قسم ہے نام نہیں ملتا، موت ہو جاتی ہے لوگوں کی، اور یہ جو فوجداری مقدمے ہیں وہ بےچارے بھگت بھگت کے مر مر آ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس سسٹم کے بارے میں؟ کوئی کبھی کوئی ہوپ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو تبدیلی لائے گا؟
اسی سسٹم کو جوڑ کے ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی آپ ہی کے سوال کا جواب ہوگا. ابھی آپ دیکھیے کہ 40 سال کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ بھٹو کی پھانسی غلط تھی. تو کیا ہم نے علامتی طور پہ ججوں کو سزا سنائی ہماری ان عدالتوں نے؟ آپ یہ دیکھیے کہ
سر آپ سزا دیں نہ دیں، ان کی تصویروں کو وہاں سے اٹھا دیں، یہ بہت بڑی بےزتی ہوگی.
یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات میں خلاصی دے رہی ہیں آپ. یہ تو آپ نے ان کی ایک یعنی قوم کی تصویر کا آپ نے سنا دیا کہ قوم کی تصویر یہ ہے کہ ہم کہتے بھی ہیں، تصویریں بھی لگا رکھی ہیں بار کے اندر بھی سب منتخب. اچھا یہ بتائیں کیا ہم نے،
مگر جب قوم نے نئی تصویریں لگائی معذرت کے ساتھ، آخر میں ہماری تلخی ہو جاتی ہے ہر پروگرام میں،
قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ ظلم،
آخر میں میری آپ کی تلخی ہو جاتی ہے، قوم نے تو تصویریں نہیں لگائی. آپ جو
میری بات غلط دے رہی ہیں، آپ میری بات غلط دے رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ قوم کے ساتھ یہ بھی ظلم ہے جو تصویر لگی ہوئی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قوم کا کوئی قصور اس کے اندر. میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر عدالت نے، ہر حکومت نے، ہر سب نے یہ کہا کہ جی سب سے پہلا جو جرم ہے جس منیر نے کیا، جو نظریہ حضرت کے تحت جو ہے فوج کو اس نے ہنگام کر دیا. کیا آج تک کسی نے کہتے سب ہیں کہ کیا آج تک کسی نے جس منیر کو علامتی سزا بھی سنائی؟ ایک پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا پشاور کے چیف جس نے کہا کہ اسے قبر سے نکال کے بھی اسے پھانسی لگایا جائے، تو کیا اس وقت کی حکومت کے وزیر قانون جو کہ تھے مطلب ہے، کیا انہوں نے کیوں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ جس جج کا دماغ خراب ہو گیا اس کو جس نے فوراً کہا دینا چاہیے؟ ایک آدمی صرف کہا تھا پشاور کے جج نے کہ یہ کیا جائے، تو یہ تو عالم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ساکن نثار نے چلتی حکومت کو اڑا کے رکھ دیا، نواز شریف کی حکومت کو، اور ساکن نثار کی پکڑے گئے ہیں، آڈیو ہر چیزیں پکڑی گئی ہیں، سب پتا بھی ہے یہ سارا معاملہ ہے، اور ساکن نثار کی وہ چیزیں آ بھی گئی ہیں سامنے، اور ساکن نثار جو ہے آج بھی 22 لاکھ روپے مہینے کی پینشن بھی لے رہا ہے، برات بھی لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے.
جی سر جی، یہ تو میں کہہ رہی ہوں، آپ وڈیروں کو کیوں نہیں یہ کہتے ہمیں جواب تو دے دینا، مجھے 2022 میں
وڈیر دیکھیں وڈیرے سرد کا سیاست دان جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں اور اس میں کچھ سروس کے لوگ بھی جو ہیں، یہ ان کا ایک ہے، ملے ہوئے گروپ ہے.
بس پھر سر تیار رہیں، کل روف صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا نا، اب آپ کے ہر وڈیرے پہ یہ حملہ ہوگا. تیار رہیں کیونکہ یہ قوم اب ویشیوں کی قوم بنے گی اگر آپ ہمارا، اس سے پہلے بھی خواجہ سراؤں نے جا کے آپ کو پتا ہے پولیس اسٹیشن پہ جا کے کیا گئے، مار مار کے پولیس والوں کا برکس نکال کے اپنا بندہ نکال کے لے آئے تھے. اگر وڈیروں نے یہ فیصلے نہ کیے تو گیٹ ریڈی فار دس کائنڈ آف تھنگس.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا مرکز دار حکومت اسلام آباد جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے، ایک آدمی ویڈیو بنا رہا ہے، اب تک لال کو پکڑے نہیں جا سکے، بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے. تو پھر لازمی بات ہے کہ اگر یہ سستی جو ہے، جو لوگ سستی کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے، اگر وہ سستی کریں گے تو یہ سارا کھاتا انہیں کے کھاتے میں جائے گا.
صحیح. میرا سر آپ سے آخری سوال ہے، اور میں بالکل، میں بڑے دکھ دہی دل کے ساتھ کہتی ہوں کہ یس، میں نے آج کے پہلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ مائی فرسٹ لو، آئی اوپن مائی آئیز ان پاکستان، آئی لو مائی پاکستان، مائی مدر از دیئر. کبھی میرا دل اداس ہوتا ہے، مجھے میرا دل چاہتا ہے میں وہاں ان جگہوں پہ گھوموں جہاں میں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں جا ریس ہوئی تھی. मगर मैं यहाँ पे बड़े दुख के साथ ये बात कहती हूँ कि आपके वडेरों ने अगर आम आदमी के जीने को इतना महाल किया, कोई वडेरा अपनी इज्जत को महफूज ना सुने। आप श्रीलंका को थोड़ा सा याद करें, आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाक्य हुआ था तो पाकिस्तान ने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की थी। इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ PDM-1 एंड अगर लोग वैशी हुए तो लोग फिर वैशी फर्क नहीं महसूस किया करते। आज सर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के बारे में बड़ी मजहब निकले तो वो पाकिस्तान से निकले, रिवायत सेक्ट निकले तो वो पाकिस्तान से निकले, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के और जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के झंडे गड़े हुए हैं। आज मारिया बी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस इट। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के 80% आदमी LGBTQ हैं।